आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं माजिद अली। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यूक्रेन तनाजा शुरू होने के बाद से ही भारत हमेशा अमन का हामी रहा है। वो दोनों मुल्कों के कामयाब दौरे के बाद वतन वापस आ गए हैं। मरकजी वजीर रक्षा खट से काठमांडू पहुंच गई हैं, जहां वो बस हादसे में हलाक हो जाने वालों और जिंदा बच जाने वालों की वापसी की निगरानी का काम अंजाम देंगी। चेन्नई से भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट रूमी एक दागा गया है, जिसे फिर से इस्तेमाल किया जा सकेगा। अमरीका ने भारत को 5 करोड़ 20 लाख डॉलर से ज्यादा मालियत के आपदोज शिकन जदीद हथियारों की फरोख्त की मंजूरी दी है। और भारत के नामवर खिलाड़ी शिखर धवन ने अंदरूनी मुल्क और बैन अल-अक़वामी क्रिकेट से सुबुकदोष होने का ऐलान किया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यूक्रेन तनाजा शुरू होने के बाद से ही भारत हमेशा अमन का हामी रहा है। वो दोनों मुल्कों के कामयाब दौरे के बाद वतन वापस आ गए हैं। अपने दौरे के दौरान वजीर आजम मोदी ने यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर जेलेंस्की के साथ कीव में वफदों की सतह की बातचीत की। मीटिंग के दौरान वजीर आजम ने पुरजोर तरीके पर कहा कि यूक्रेन और रूस को वक्त जाये किए बगैर मिल बैठकर मौजूदा लड़ाई खत्म करने के तौर तरीके तलाश करने चाहिए। जनाब मोदी ने कहा कि फरवरी 2022 में दोनों मुल्कों के दरमियान यह तनाजा शुरू हुआ था और भारत तभी से अमन का हामी रहा है। इस दौरे के दौरान मुख्तलिफ शोबों में बाहमी रिश्तों को मुस्तहकम करने की गरज से 4 मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए गए, जिनमें ज़राअत, सकाफती तबादले और दवाओं के कंट्रोल से मुतालिक मेयारात भी शामिल हैं। इससे पहले पोलैंड के दौरे में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वारसा में पोलैंड के वजीर आजम डोनाल्ड टस्क से गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं ने ताल्लुकात को बढ़ाकर कलीदी शराकतदारी तक पहुंचाने का फैसला किया। उन्होंने बाहमी इलाकाई और बैन अल-अक़वामी तआवुन के अज़्म का इजहार किया और दोनों मुल्कों के दरमियान खुशहाली, इस्तेहकाम और एक पायदार आलमी निजाम की जरूरत को उजागर किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत सलाहियत साजी और जदीद टेक्नोलॉजी और सनअती शराकतदारी के लिए दिफा के तमाम शोबों में अमरीका के साथ मिलकर काम करने का ख्वाहिशमंद है। कल वाशिंगटन डीसी में भारत अमरीका स्ट्रेटेजिक शराकतदारी फोरम के जरिए मुनक़िद की गई एक गोलमेज मीटिंग में अमरीका की दिफाई सनत के सीनियर लीडरों के साथ बात करते हुए जनाब सिंह ने यह बात कही। जनाब सिंह ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत अमरीका की सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी में तआवुन को खुश आमदीद कहता है और भारत में माहिर इंसानी वसाइल का बेस तैयार है। भारत में एफडीआई और तजारत के लिए साजगार माहौल तैयार है और भारत में बड़े पैमाने पर घरेलू मार्केट मौजूद है। गोलमेज में अमरीका की दिफाई और टेक्नोलॉजी कंपनियों के बड़े लीडरों ने शिरकत की। वजीर दिफा ने वाशिंगटन डीसी में अमरीका के कौमी सलामती के मुशीर जैक सोलिवन से भी मुलाकात की। दोनों लीडरों ने ताजा सियासी हालात और इलाकाई सिक्योरिटी मामलों पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने भारत और अमरीका के दरमियान दिफाई सनत में जारी तआवुन पर भी तबादला ख्याल किया और दोनों मुल्क जिन सनतों में मजीद तआवुन कर सकते हैं उस पर भी तबादला ख्याल किया। अमरीका के वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने आपदोज शिकन हथियारों की फौजी इम्कानी खारजी फरोख्त की मंजूरी दे दी है। इनमें MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर कसीर मकसदी मिशन भी शामिल है। तकरीबन 5 करोड़ 28 लाख अमरीकी डॉलर के हथियार फरोख्त किए जाने का मंसूबा है। अमरीका की सिक्योरिटी तआवुन से मुतालिक एजेंसी ने इस सिलसिले में कल मतलूबा सर्टिफिकेट जारी कर दिया। बाइडेन इंतजामिया की तरफ से जारी किए गए एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इस समझौते से वाशिंगटन की खारजा पॉलिसी और कौमी सलामती के मकासद की तकमील में मदद मिलेगी। इसके अलावा अहम दिफाई शराकतदार भारत के साथ बाहमी कलीदी नौयत के रिश्ते मुस्तहकम होंगे और सिक्योरिटी में बेहतरी आएगी। इस नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि भारत जनूब एशिया और भारत बहरुल काहिल खत्ते के सियासी इस्तेहकाम, अमन और इक्तिसादी तरक्की में बदस्तूर एक अहम सियासी कुव्वत बना रहेगा। भारत का पहला फिर से इस्तेमाल के लायक हाइब्रिड रॉकेट रूमी एक चेन्नई से दागा गया। स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के साथ मिलकर इसे तैयार किया है। एक मुतहर्रिक ट्रेजेक्टरी का इस्तेमाल करके इसे दागा गया। 50 पाइको सैटेलाइट और तीन क्यूब सैटेलाइट के साथ इसे दागा गया। 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचकर इस रॉकेट ने कुछ ही सेकेंड्स में कई तजर्बात किए और जमीन पर वापस आ गया। इसरो के खलाई मरकज के साबिक डायरेक्टर मायल स्वामी अन्नाधुराई ने कहा कि इस रॉकेट में ठोस और रकीक दोनों तरह के ईंधन का इस्तेमाल किया गया था। मवासलात के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने टेलीकॉम खिदमात मुहैया कराने वाली कंपनियों से कहा है कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए सभी इकदाम करें कि शहरियों को अच्छी टेलीकॉम खिदमात मिल सकें। टेलीकॉम खिदमात मुहैया कराने वाली कंपनियों की हाल ही में तशकील दी गई एक नई एडवाइजरी कमेटी के साथ जनाब सिंधिया ने कल नई दिल्ली में दूसरी मीटिंग में शिरकत की। भारत के टेली मवासलात इकोसिस्टम के मुस्तकबिल के खदोखाल में इजाफा करने की गरज से मुतालका कंपनियों के दरमियान तालमेल पैदा करना इस कमेटी का अहम मकसद है। जनाब सिंधिया ने टेली मवासलात खिदमात के मेयार और भारत के 6G विजन के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट को फरोग देने के बारे में भी तबादला ख्याल किया ताकि इस शोबे को नई बुलंदियों तक ले जाया जा सके। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। नौजवानों के उमूर और खेलों की मरकजी वजीर मम्लिकत रक्षा खडसे नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंच गई हैं, जहां वो नेपाल के जिले तनहुन में हुए एक सड़क हादसे के मुतासरीन को वापस लाने के काम की निगरानी करेंगी। काठमांडू में भारतीय सफारतखाने के मुताबिक इस हादसे में 27 भारतीय अफराद हलाक हुए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मोहतरमा खडसे ने कहा कि उन्होंने काठमांडू के त्रिभुवन बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर भारतीय सफीर नवीन श्रीवास्तव और नेपाल की वजारत खारजा के ज्वाइंट सेक्रेटरी ब्रिगु धुंगना के साथ बचाव कार्रवाई और मजीद इकदाम के बारे में तबादला ख्याल किया है। महाराष्ट्र सरकार की दरखास्त पर भारतीय फजाइया का एक तैयारा इस बस हादसे में हलाक हुए रियासत के अकीदतमंदों के जसद खाकी को लेकर आएगा। मोहतरमा खडसे ने त्रिभुवन यूनिवर्सिटी टीचिंग अस्पताल जाकर हादसे में जख्मी हुए अफराद की खैरियत दरियाफ्त की। काठमांडू में भारतीय सफारतखाना जख्मियों के इलाज और महलुकीन के जसद खाकी को जल्द अज जल्द भारत लाने के सिलसिले में मकामी हुकाम और अस्पताल के अमले के साथ मुसलसल राबते में है। आसाम में एक नाबालिग लड़की की आबरू रेजी के खास मुलजिम की आज सुबह सवेरे ढींग में मौत हो गई। आज सुबह सवेरे जब पुलिस मुजरिम को जुर्म की जगह ले जाकर जुर्म के बारे में तफसीलात हासिल कर रही थी कि इस दौरान यह हादसा हुआ। मुलजिम तफजुल इस्लाम, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था, पुलिस की गिरफ्त से भाग निकला और एक तालाब में छलांग लगा दी, जिसके सबब उसकी मौत वाकई हो गई। पुलिस ने बाद में एसडीआरएफ की एक टीम की मदद से उसकी लाश बरामद की। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि ढींग के मकाम पर हुए इस वेश्याना जुर्म में मुबैना तौर पर तीन अफराद मुलविस थे, जिसके बाद पूरी रियासत में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे हुए थे। क्रिकेट खिलाड़ी शिखर धवन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर करते हुए बैन अल-अक़वामी और घरेलू क्रिकेट के सभी तीनों फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में धवन ने कहा कि उनके साथ बेशुमार यादें रहेंगी। उन्होंने अपने सभी चाहने वालों के प्यार और ताउन के लिए शुक्रिया अदा किया। बाएं हाथ के बल्लेबाज शिखर धवन ने भारत के लिए 37 टेस्ट मैच, 167 एक रोजा बैन अल-अक़वामी मैच और 68 T20 मैच खेले। एक रोजा बैन अल-अक़वामी टूर्नामेंट्स में शानदार कारकर्दगी की वजह से उन्हें मिस्टर आईसीसी के खिताब से मशहूर थे। उन्होंने एक रोजा बैन अल-अक़वामी मैचों में 17 सेंचुरियां और 39 निस सेंचुरियां बनाई थीं। शिखर धवन आखिरी मरतबा दिसंबर 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ एक रोजा बैन अल-अक़वामी सीरीज में भारत के लिए खेला था। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यूक्रेन तनाजा शुरू होने के बाद से ही भारत हमेशा अमन का हामी रहा है। वो दोनों मुल्कों के कामयाब दौरे के बाद वतन वापस आ गए हैं। मरकजी वजीर रक्षा खडसे काठमांडू पहुंच गई हैं, जहां वो बस हादसे में हलाक हो जाने वालों और जिंदा बच जाने वालों की वापसी की निगरानी का काम अंजाम देंगी। चेन्नई से भारत का पहला हाईब्रिड रॉकेट रूमी 1 दागा गया है। अमरीका ने भारत को 5 करोड़ 20 लाख डॉलर से ज्यादा मालियत के आबदोज शिकन जदीद हथियारों की फरोख्त की मंजूरी दी है। और भारत के नामवर खिलाड़ी शिखर धवन ने अंदरून मुल्क और बैन अल-अक़वामी क्रिकेट से सुबकदोश होने का ऐलान किया है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।